हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम भागवदीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप आदरणीय श्री 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 स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, यत कुल शिरोमणि स्वामी विद्यानंद जी महाराज और वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को दास का प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अर्जुन का नाम होता है रुजु। रुजु का अर्थ होता है सरल। सरल माने जिसके चित्त में कपट नहीं है, जिसके चित्त में दंभ नहीं है, छल नहीं है, निष्पाप है, तो यही होता है सरल। और जब सरलता होती है तो मन में किसी भी तरह की ये मैं क्यों पूछूं, ऐसे पूछने से कोई बुरा तो नहीं मानेगा, ऐसा पूछने से मेरी बदनामी तो नहीं होगी, मैं अयोग्य या तो नालायक तो नहीं माना जाऊंगा, ऐसी कोई भावना नहीं है। हृदय में एक प्रश्न हुआ तो पूछ लिया। 7 अध्याय पर्यंत जो कुछ भी पूछा जाए, तमाम कुछ पूछने के बाद कृष्ण परमात्मा के द्वारा अनेक उत्तर देने के बाद और कोई प्रश्न की आवश्यकता नहीं, किंतु फिर भी अर्जुन पूछते हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम। ये विहंगम दृष्टि कर लेते हैं अक्षर ब्रह्म में, 8 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में। ये ब्रह्म क्या है? जब ब्रह्म ही पूछ लिया तो फिर अध्यात्म पूछने की क्या आवश्यकता है? फिर कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये तमाम प्रश्नों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्म ही जब जान लिया, अगर हम जाकर के प्रधानमंत्री के घर में टिक जाएं, उनके साथ में रहें, तो फिर आपके घर का ड्राइवर कौन है, चौकीदार कौन है, आपका ये खाना कौन बनाता है, आपका आंगन को साफ कौन करता है, ये सब पूछने की आवश्यकता क्या है? बहुत सीधी बात है। किंतु अर्जुन के मन में जो भी बात है सब स्पष्ट करके पूछ लिया। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। ये बड़ा सुंदर शब्द है पुरुषोत्तम। आपसे अधिक और कोई श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए मैं कहां जाऊं, आप ही को तो पूछूं। आप हमारे समक्ष हैं, करुणा कर रहे हैं, उदार चरित हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, कृपया कहिए किम अधिभूतम किम अधिदैवम और कहा किम अधियज्ञम कथम कोत्र देह अस्मिन मधुसूदन। देह में क्या संबंध है? परमात्मा ने कहा कि बहुत सुंदर बात है, अक्षर ब्रह्म जो कहा, अक्षर मने जिसका विनाश नहीं होता है, ये ब्रह्म है। लंबी व्याख्या की आवश्यकता नहीं, जिसका विनाश नहीं होता है वह ब्रह्म है। अक्षर क्षर विनाश क्षत टूटने वाला अक्षर अविनाशी, दैट्स ऑल। जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो चिरंतन है, जिसको आवागमन नहीं, जिसका कोई अतीत नहीं, उसको भूत भविष्य कुछ नहीं, सब समय वर्तमान ही है, वही एक अक्षर वही ब्रह्म है। तो अध्यात्म क्या है? इस ब्रह्म के स्वभाव को जानना अध्यात्म है, ब्रह्म के स्वरूप को जानना। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या, आपका क्या स्वरूप है, वही अध्यात्म है। आपका स्वरूप क्या है? ये मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये आपका स्वरूप है। जो कर्मेंद्रिय नहीं है आप, पांच ज्ञानेंद्रिय नहीं है, पंच प्राण नहीं है, पंच महाभूत नहीं है, फिर 5 तन्मात्रा नहीं है, अंतकरण चतुष्टय नहीं है, मनोबुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, ये जो है यही आपका स्वरूप है, जो नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजर है, अमर है, वही अविनाशी, वही ब्रह्म, वही आप हैं। मैं और तू का जहां भेद नहीं रहेगा, यही ब्रह्म है, वही अध्यात्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये क्यों महावाक्य कहे? यही अक्षर ब्रह्म की श्रेष्ठता और अध्यात्म का स्वरूप है। मैं ब्रह्म हूं, तू भी वही है। कल शाम को जो कथा बताई गई आपको उज्जैन योगी की, कि वो अपने यहां पाला हुआ एक पशु है कुतिया, उनके 7-8 बच्चों को जिस थाली में दूध डालकर पिलाता, खुद भी पीता है उसमें से। क्यों? क्योंकि उसको मेरे में इसमें कोई भेद नहीं नजर आया। वो जो भेद नजर नहीं, कैसे महापुरुष लोग रहते हैं जो परमहंस अवस्था में हो जाते हैं, तो वो ऐसी अवस्था में पड़े रहते हैं जो निराभरण है, देह में कोई वस्त्र नहीं है, मलमूत्र भी वहीं त्याग हो गया उनका, उनको उनकी परवाह नहीं है। किसी ने भोजन उनके सामने रख दिया तो उस भोजन के ऊपर से कौवा भी खा रहा है, एक स्वान एक कुत्ता भी खा रहा है, गाय भी खा रही है, और उनके कान पर नाक पर सींग पर कोई और पक्षी बैठा है, उनको कोई भी भेद नहीं है। एक महापुरुष एक देहातीत अवस्था तुरिया अवस्था, ये जिस कैलाश पीठ से महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन यतिकुल शिरोमणि द्वादश दर्शनाचार्य कैलाश पीठाधीश्वर श्रीमद स्वामी विद्यानंद जी महाराज पधारते थे, उनके आश्रम में एक छोटे महाराज रहे हरिहर तीर्थ जी, वो ऐसी अवस्था में थे। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज ऐसी अवस्था के थे। हमारे ऋषिकेश में गंगा के तट के ऊपर स्वर्गाश्रम में एक मस्तराम बाबा ऐसी अवस्था के थे, और गीता भवन के पीछे पहाड़ में एक टाट वाले बाबा थे, वो भी ऐसी अवस्था में थे, जिनकी काया 6.5 फीट ऊंची थी, बाल उनके घुटनों के नीचे तक थे, और कितनी बर्फ गिरी हो, हम उनको लेकर के मसूरी गए, वो ऐसे ही बैठे हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। शिशि में आनंद महिमा ऐसी अवस्था की थी। हाँ, उड़िया बाबा ऐसी अवस्था के थे। ये तो उन महापुरुषों के नाम हम दे रहे हैं जिनका हमने खुद दर्शन किया है, और भी विभूतियां होंगी। तो ये क्या अवस्था है जो ब्रह्म की स्थिति में रहते हैं किंतु हमारे कल्याण के लिए नीचे आते हैं, वही स्वभाव को जानना अध्यात्म है। तो कर्म क्या है? ऐसे स्वभाव को जानने का प्रयत्न वो कर्म है, जिसका हम उल्लेख पहले कर चुके हैं कि 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या कहा, कि जो मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मत कर्म कृत मत परमो मेरे परायण होकर करता है, मत भक्त भक्ति से करता है, संग वर्जित उसको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या असूया दंभ छल कपट कुछ नहीं है, वो नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध है, वो एकदम ट्रांसपेरेंसी ऐसा जीवन यापन करता है। तो वो जो बात है तो उनके लिए ये कहा है कि संगवर्जित निर्वैर किसी से भी वैर नहीं है, सर्वभूतेषु जड़ से चेतन से तमाम से उसके साथ में तादात में है, यह सर ऐसा हो तो वो मेरे को प्यारा है। तो ये इसको जानना ऐसा कर्म कर्म है। अब तीन बात और कही कि अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ। अधिभूत क्या है? नारायण आप जो दिख रहे हो आपका देह की अधिभूत है, आपका जो देह है ये अधिभूत है, किंतु देह स्वतंत्र नहीं है, देह की गतिविधि प्राण के द्वारा है, जो अव्यक्त है व्यक्त के भीतर अव्यक्त है, व्यक्त तो देह है, अव्यक्त ये हमारे भीतर जो है वो अधिदैव है, किंतु अव्यक्त के भीतर भी एक केंद्र स्थान है जिसको हम आत्मा कहते हैं, द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, परम चेतना की चेतना, गहनता की गहनता के परे, वो जो है वो महत तत्व जो है वही ब्रह्म तत्व का केंद्र, वही ईश्वर की सत्ता। ये इतना उदाहरण और कोई नहीं दे सकते, फिर भी उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें तो ये आपके जो बल्ब हैं इसको आप बोल सकते हैं अधिभूत, किंतु बल्ब जो है उसमें प्रकाश आता है जिस बिजली से, वो बिजली जो है वो है अधिदैव, क्योंकि आंख है उसमें रोशनी किससे है? वो प्राण से है। वो प्राण जो है थोड़ा दाएं बाएं हो गया तो ऐसा हाथ पांव हो जाते, इसको क्या बोलते हो, पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया, फिर वो एक फिजियोथेरापी करके उसमें प्राण में चेतना, वो जो अव्यक्त है उसको व्यक्त किया जा सकता है, किंतु एक बार अंदर से वो अधियज्ञ निकल गया ओम तत्सत, हाँ राम नाम सत्य है, तो फिर उसको ही केवल जपना पड़ेगा, फिर आपका ये अधिदैव और अधिभूत कुछ भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि वही केंद्र है, वही माता पिता धाता वही है। कौन है? चेतना की चेतना। ये जो बल्ब है वो फूट गया तो नया बल्ब लगा दिया जा सकता है, बिजली का करंट तो है। हाँ, ये वासाओं से जीर्णानी यथा विहाय, ऐसे कह दिया कि तो पुराने पत्ते झड़ गए तो नए आ जाएंगे, कोई बुरी बात नहीं है, शरीर चला गया तो नहीं आएगा, क्योंकि आपकी चेतना जो है वो चेतना उसके लिए प्रतीक्षा करती है। किंतु एक अंदर जो एक महत प्राण है, जैसे आपका कनेक्शन छूट गया, कैसे करके छूट जाएगा? परमात्मा की इच्छा से, यद्यत्वा न निवर्तन्ते। वो श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, नमक की गुड़िया वो चलो मैं समुद्र को देख के आती हूं कितना गहरा है, गई अब वापस नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसमें मिल गई, उसका व्यक्तिगत अस्तित्व ही नहीं रहा। और जहां व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रहता है, व्यष्टि भी नहीं समष्टि भी नहीं, व्यष्टि समष्टि की चेतना का जो संचार करते हैं वही अधियज्ञ हैं। तो महाराज अर्जुन ने ये जब पूछा, फिर भगवान है उन्होंने धीरे धीरे कह रहे कि भाई इनके लिए क्या करना है, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, ये मेरा अंत काल में जो स्मरण करके शरीर को त्याग करता है, यह प्रयाति समद्भावम याति नस्तत्र संशयम, वो उस परंपरा की प्राप्ति करता है उसमें कोई संशय नहीं है जो मेरा नाम। किंतु भाई कैसे आगा आपका नाम? सारा जीवन तो नमक मिर्च हींग जीरा किया है। सोच लो अपने आप को कि रात में सोने के पहले आपका अंतिम विचार क्या होता है? वो दूध जमा व्यू के नहीं, अरे मारी माँ राते तमे जामी पड़सो इनो भरोसो छे, दूध ढाक्यू के नहीं, ये रात में सोते सोते भी ये दूध का खिड़की खुली है बिल्ली आ जाएगी, ये रात में सोने के समय बड़ा गड़बड़ बात है, कुछ मत करो, ये सब अच्छे से देख लो, पहले दूध भी जमा लो, उसको भी ठीक रख दो, उसको भी ढक दो, उसके ऊपर वजन भी रख दो और खिड़की भी बंद कर लो, तब सोने के पहले केवल परमात्मा का स्मरण करके सो। अगर रात में अगर हमारी छुट्टी भी हो जाए तब भी हमको उसी परम तत्व की प्राप्ति होगी। रात में एक विचार जो है, सोने के पहले एक विचार केवल परमात्मा का, उठने के साथ में विचार एक परमात्मा का। जो सोना है वो छोटा मृत्यु है, मृत्यु है वह दीर्घ निद्रा है। तो मृत्यु के समय में जो विचार लेकर के आपके मृत्यु हो जाएगी, वो बीज डाला गया है आपके आगे आने वाले जन्मों के लिए। कहा कृष्ण ने, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध बोल करके घर में जाकर के पति से भाई से बेटे से महाराज ने कहा है, मैं राम राम तो बोलती हूँ तुम्हारी तो युद्ध भी करती हूँ, अरे ये युद्ध नहीं है नारायण, जो हम कर रहे हो सारा युद्ध ही है। कल देखिए, ये कल रात में भारत और पाकिस्तान के जो क्रिकेट हुई है वो कितना बड़ा युद्ध है, कोई तोप नहीं चली है, कोई बर्छी भाले नहीं चले, वो क्रिकेट कितना बजे पूरा हो गया, उसके बाद में रात 12:30 बजे तक वो पटाखे नहीं है मेरे माँ भगवती, वो ये जिस रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं थी वहां पर कारों की एक बाढ़ आ गई और हर कार में 2-4-3-5 भारत के झंडे और पटाखे चढ़ाके तो हैं, ढोल नगाड़े तोप पुप 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 और शंख, क्या है? गौरव है। कैसे गौरव है? हम भारत के हैं, भारत में हम जीत गए। तो ये जो युद्ध के विजय हो उससे विशेष विजय क्रिकेटर, कितने लोगों के साथ हम खेलते रहते हैं किंतु हमको कोई भी जीत का इतना ये यहां पर मदहोश नहीं हो जाते। हाँ, कितना फटाका, वो फटाका सामने रखा था, आग पकड़ के रखा था, बस तू जीत, बस इसे लगाता हूं ऐसे करके लोग करने लगे। क्यों? कहते हैं कि उसके लिए पूरी तैयारी, मई अर्पित मनोबुद्धि, जिन्होंने अपनी मन और बुद्धि मुझको अर्पण कर दिए हैं वो मुझको प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, ये क्रिकेट का जब चालू हुआ तो हमें दूरदर्शन ने बुलाया, और गुजरात में एक टीवी चलता है, TV9 गुजराती, तो TV9 गुजराती है, कहा स्वामी जी कहिए योग के द्वारा क्रिकेट क्या अच्छा हो सकता है। ये युवराज है वो मूड में नहीं है, उसमें मूड को कैसे लाया जा सकता है। और यूनुस खान जो है बड़ौदा वाला, वो बड़ा टेम्पो में चलता है, उसका टेम्पो कैसे बना रखना, एक ही बात है। योग जो है सबके लिए एक ही बात है, मन को शांति ही, ये शांत रहना। अगर आपको गुस्सा आ गया, हाँ, अगर आप विचलित हैं तो केस छूट जाएगा। हाँ, अगर आप मन में खुशी नहीं है, मन में एकाग्र नहीं है, तो फिर बोल आपके सिर में आके लगेगा। हाँ, व्हाइट बोर्ड को भी मारने की कोशिश किया तो कोई बीच में स्तंभ चल जा सकता है। हाँ, वो ऊपर से जब गेंद फेंकता है, हाँ ऊपर से, तो कहाँ आता है, बिल्कुल पांव के पास में आएगा तो मिड स्टंप को मार के जाएगा। तो आपको जो स्पिनर है, हाँ, या जो विकेट कीपर है, तो इनको और बैट्समैन है, सबको एकदम जागृत, कैसा अवेयरनेस, ऐसा रहना पड़ेगा, नहीं है तो गया। तो ये तमाम के लिए एक ही नियम है। हमारे मृत्यु के समय, मृत्यु कब आने वाली है, नारायण कभी भी आ सकती है। इस समय बोलते बोलते भी इसी बंबई में कांदीवली में एक भागवत सप्ताह हो रही थी। वो एक संत थे और सफेद कपड़ा डालते थे और लिखते थे हिमालय निवासी गुजराती महात्मा योगेश्वर। तो उनका प्रवचन बहुत धीरे धीरे चलते थे, धीरे धीरे बोलते थे। यहां पर भी आए, बहुत उनके माताजी को अपने साथ बैठाते थे, तो उनको भागवत कथा के उद्घाटन प्रवचन के लिए बुलाया। तो उन्होंने क्या कहा, जिसे अपना ढंग से बोलते हैं धीरे धीरे, ये कहा देखिए ये भागवत कथा जो है वह मृत्यु को जय करने की कथा है। ये मृत्यु तो अनिवार्य है, किंतु मृत्यु कब आएगी ये पता नहीं। परीक्षित को तो पता है कि अब 7 दिन में तक्षक आएगा और काटेगा, हमको आपको पता नहीं। इसलिए हमारे प्रत्येक सांस में हमें परमात्मा के साथ अनुसंधान करना चाहिए। यही कहा, हाँ, तस्मा सर्वेशु कालेशु झुका ना, वही बोल रहे थे योगेश्वर। हमारे अच्छे दोस्त रहे, 6 महीना मसूरी रहते थे, वो रहते थे लाइब्रेरी पॉइंट में, मैं रहता था हैप्पी वैली में, हम दोनों ही हमेशा मिलते थे एक जगह में, हवा घर में मिलते थे, रोज रोज मिलेंगे, फिर मैं उनको छोड़ के आऊंगा। वो धीरे धीरे चलते, धीरे धीरे बोलते, वो क्या बोले, इसलिए प्रत्येक सांस में भगवान का सुमिरन रखो, क्योंकि पता नहीं कि आने वाला सांस है, जाने वाला कब बंद हो जाए। बस प्रत्येक सांस में बोलो, क्या बोलना, नारायण, बस उस बैठे बैठे ही प्राण चला गया उनका। कथा में बैठे हैं, व्यास पीठ पर बैठे हैं, और सामने कथाकार बैठा हुआ है जो कथा प्रारंभ करेगा, उसका दीप नारायण, तो ऐसे बैठे रहे। उनके साथ में उनके माताजी के देहावसान के बाद में एक और महिला रही, वो उन्होंने लिखा है कि मेरा अगला जन्म में रामकृष्ण परमहंस था, और ये महिला जो है वो शारदामणि देवी थी, ऐसे लिखा है। तो उसको आजकल भी लोग माँ माँ ऐसा बोलते हैं, कुछ देवी भी बोलते हैं, तपस्विनी, बड़ी तपस्विनी है। भारतीय विद्या भवन में उनके हिंदी अनुवाद, उनके जो प्रकाश पथ, उनका जो जीवन है उसका विमोचन है, वो हमारे ही द्वारा यही हुआ था। तो वो देवी जो है उन्होंने कहा बिल्कुल महात्मा जी को हाथ नहीं लगाना, वो महासमाधि में गए हैं, अभी समाधि से नीचे नहीं आएंगे, तब तक कोई छूना नहीं चाहिए। वो ऐसे ही बैठे थे, लोगों ने देखा तो प्राण नहीं है, और वो लड़े बहुत बहुत ही कहती रही नहीं हाथ लगाओ, अभी क्या करे, कथा का तो अपना हो गया इतिश्य। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई डॉक्टर उठा, बहन जी हटिए, सब गड़बड़ हो रहा है, आधे ये इनको आधे घंटे के पहले मर गए हैं, आप ले जाना चाहें घर तो ले जाएं, किंतु ये मर गए हैं, समाधि की माध्यम नहीं है। तो ये बात तो अलग है, किंतु कैसे हो सकता है, भगवान ने कहा तस्मा सर्वेशु कालेशु मां अनुस्मर युद्ध। अपने प्रत्येक सांस में हम जो करें यत करो सी यदस्ना सी यज्जुहो सी ददास्यत, जो कुछ भी करो हाँ उसको सतत परमात्मा का सातत्य बनाए रहो। क्या कहा भगवान ने, अभ्यास युक्तेन, अभ्यास से ये असंभव नहीं है। न अन्य गामिना, ये इधर उधर मन को भटकाओ मत नारायण। प्रायण काले मनसा चले न भक्त्या युक्त युग बले न चैव भ्रुवर मध्य प्राण आविश्य, अगर भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को ले जा करके यदक्षरम वेद विदो वदंती, जो वेद का रहस्य गायत्री का मूल बीज ओमकार है उसको विशंति अध्यतयो वीतरागा, तो वही ओमकार प्रणव का ध्यान प्रकुटी में करने से प्रयाण काल के समय, तो प्रयाण काल तो कभी भी आ सकते हो, सभी समय आप मन को ओमकार में लगाए रखो। सर्वद्वाराणी संयम मनोरुधि निरुद्ध च, देखिए ये बहुत जरूरी बात है, सर्वद्वाराणी संयम्य, तमाम द्वारों पर संयम करना चाहिए, विशेष रूप से बोलने पर तो करना ही चाहिए, बाकी द्वारों पर संयम थोड़ा मुश्किल है मगर बोलने पर तो बहुत ही सरल है। इच्छा हो तो बोलो, इच्छा नहीं हो तो ना बोलो, किंतु बड़बड़ाते रहना ये आपके जीवन की बहुत ही बचकने की ये प्रतिबिंब ये नारायण ये है, तो बहुत जरूरी बात है कि अपने को संयम रखो। आवश्यकता है उतना बोलिए, बिना बोले तो गुजारा होता नहीं है समाज में रहते, किंतु बोलिए, थोड़ा बोलो, मीठा बोलो, उपयोगी बोलो, कड़वा ना बोलो और असत्य ना बोलो, बहुत जरूरी बात है। हमारे चारों ओर के लोगों को हमारे बोलने से कष्ट ना हो ऐसा बोलो, बड़ी आवश्यक बात है, जो हम बड़े वी आर वेरी लूज अबाउट इट, हमको कोई संयम नहीं, तो ये कहते हैं सर्व द्वाराणी संयम्य, बहुत जरूरी बात है। मनोरुधि निरुद्ध च, मन को हृदय में ला करके, हृदय जो एक है वहां आ गया तो शांत, फिर कोई चिंता नहीं, मन की चंचलता है वासना है वो तमाम जब हृदय में आ गया, जब हम हो ऐसा बोलते हैं तो उस समय कोई विचार नहीं होता है, निर्विचार अवस्था होती है। बार बार ऐसे बोलते चले गए तो अनन्य चेताः सततम् यो माम स्मरति नित्यश, तो किसी ने हमको कहा कल शाम को आकर के, स्वामी जी एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने कहा कि साधु लोगों को 100 माला जप करना चाहिए, तो ओम 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 ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा बोले क्या। मैंने कहा क्यों भाई, साधु लोगों को जप कहा है, तुम्हें तो नहीं कहा है बेटे, तुम्हें तो नहीं कहा है, तुम्हें क्या कहा, आपको आपके गुरु ने जो मंत्र दिया, मेरे तो कोई गुरु नहीं, तो तुम्हारा सद्भाग्य है, हम क्या करें कि तुम खुद ही गुरु बने घूमते फिरते हो, तो गुरु के चरण में। क्या कहा इन्होंने, कहा तस्याहम सुलभम पार्थ नित्ययुक्तस्य, महात्मा लोगों को जप करने के लिए कहा है, महात्मा का अपना ढंग करने के लिए उनके गुरु जो बताएं, क्या कहते हैं, कहा कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, जब ये हमारा जो घटना क्रम है आवागमन का, तो परम सिद्धि को जो प्राप्त हो गए महात्मा जन वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं, दुख के स्थान रूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्योंकि जो पुनर्जन्म होता है 9 मास पर्यंत नरक में उसको रहना पड़ता है, तो उससे बड़ा कोई दुख नहीं है नरक की यातना को भोगना उस जीव को। न आपनुवंती, जो परमात्मा के साथ में तद्रूप हो जाते हैं उनको ऐसा जन्म फिर नहीं। आ ब्रह्म भुवनान लोकाहा पुनरावर्तिन अर्जुन, हे अर्जुन ब्रह्म लोक से लेकर के सभी लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, किंतु एक बार मुझ में मिल जाए तो ब्रह्म लोक से भी ऊपर, ये भी बात असंभव नहीं है, कोई वासना नहीं रहेगी, कोई शरीर है तो काम तो करना पड़ेगा, शरीर है तो चित्त भी है मन भी है बुद्धि भी है, किंतु इसमें मेरा कुछ नहीं है, इससे अलिप्त हो करके, अलिप्त मने आपको जहां मान और अपमान कुछ भी नहीं रहे, मान नहीं रहे अपमान नहीं रहे काम नहीं रहे क्रोध नहीं रहे, कैसा निर्मल हृदय हो जाए एकदम, तो ये निर्मल चित्त की जो स्थिति है, जैसे जल निर्मल होता है तो ऊपर से देखो तो नीचे चार आना है, आठ आना है, रुपया है, पांच रुपए का सिक्का दिखता है, किंतु जल बहता रहे, जल मेला रहे तो नहीं दिखेगा। तो कैसे करना है? अब्रह्म भुवनान लोकाः, तो ब्रह्म तक ऐसा है, ब्रह्म के परे जाने के लिए हमको ये किसी भी विषय वासना में मन कैसा भी नहीं, एक छोड़ा एक रत्ती भी नहीं, तो सहस्र के पर्यन्ते ब्रह्मणो विदु। ये कहते हैं कि ये ब्रह्मा जो है, इनके जो युग है वो हजारों युग हैं, इनका एक दिन बनता है, हमारे हजार युग के एक रात्रि बनता है, अरे इनकी चिंता में मत पड़ो। ब्रह्मा की रात्रि, ब्रह्मा का दिन से हमारा क्या संबंध है? हमारा संबंध अपने जीवन से रखो। हाँ, कि मेरे जीवन की रात्रि है, देखिए वो रामचरितमानस जो है, राम कथा है, वो पहले तो वाल्मीकि जी ने लिखा, बाद में तुलसीदास जी ने तो लिखा ही है, इसको छोड़कर के तमिल में कंब रामायण है और बंगाल में एक कृतिवास रामायण है। तो कंब रामायण में एक प्रसंग बड़ा सुंदर है, वो प्रसंग लंबा सा नहीं कहेंगे, एकदम सूक्ष्म से कहेंगे कि जब राम जी सीता जी को लेकर के वापस आए और फिर दूसरे दिन फिर से वो राज तिलक होने वाला था, तो राम जी ने कहा था कि कल राज तिलक होने वाला है, हम चाहते हैं जिनको कुछ कुछ चाहिए मांग लो, कल हम राजा बन जाएंगे तो फिर मैं आपके बड़े भाई नहीं रहूंगा, प्रजा को जैसे मिलता है वैसे मिलेंगे, व्याख्या लंबी नहीं करेंगे, किंतु उसमें जो हमारे भरत जी हैं तो उनकी धर्मपति का नाम है मांडवी है, तो मांडवी ने क्या मांगा, वो कंब रामायण में कहा, मांडवी ने मांगा, प्रभु आप जब वन में गए थे ना तो जिन वल्कल वस्त्रों को धारण किया था, पादुका तो भरत जी लेके आए थे, बोले जिन वल्कल वस्त्र को धारण किया था, जिन रुद्राक्ष को धारण किया था, दूध से सटी हुई जिन जटाओं को धारण किया था, वो जटा, वो वल्कल वस्त्र और वो रुद्राक्ष मुझे चाहिए। तो सीता जी ने एकदम आलिंगन दे दिया, क्यों मांग रही हो ये सब? तो मांडवी ने जो जवाब दिया है अत्यंत गंभीर है। मांडवी ने कहा कि ये लोग कल राजा हो जाएंगे, राजा होने से हम सब राजरानियां हो जाएंगी, इतने दिन तक न हम राजा थे न प्रजा थे, एक ऐसी अवस्था में जुड़ रहे थे जहां हमारे अस्तित्व का हमको कोई भी एक पता ही नहीं था, ऐसे अस्तित्व में हम जी रहे थे, अब आकस्मिक आई हुई ये सत्ता, आकस्मिक आई हुई ये सत्ता कहीं हमें बहका ना दे, हाँ कहीं हमको छका ना दे, इसलिए मैं चाहती हूं कि ये थोड़ा हमारा कृपा करके ये आपके वल्कल वस्त्र, आपके रुद्राक्ष और ये आपकी जटाएं हैं मुझको दीजिए, उसको मैं शयन खंड में रखूंगी ताकि मेरी कोई रात्रि भोग की रात्रि नहीं हो, मैं इनका दर्शन करूंगी, मेरी कोई रात्रि भोग की रात्रि नहीं हो और मेरा शेष जीवन योग का जीवन हो। देखिए क्या एक मानसिक स्थिति है इस महिला की, एक एक दिव्य पात्र है रामचरितमानस में, किंतु यहां क्या कहना है बड़ा अद्भुत है, क्या कहा कि आपके जीवन की प्रत्येक क्षण है वो अवेयरनेस के साथ में चले, जागृति के साथ में चले, कि केवल वो ही है एक तू एक तू एक, उसका ही चिंतन। तो भूत ग्राम सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलियते, भूत ग्राम ये हमारा जो शरीर है वो पुनः आता है जाता है रात्रि में, किंतु उन तमाम से मुक्ति होने के लिए जो एक व्यक्त है शरीर, उसके भीतर एक अव्यक्त है और अव्यक्त के भीतर भी अव्यक्ता व्यक्त है, जैसे आपसे कहा कि एक अधिभूत है, अधि दैव है, अधि यज्ञ है, ऐसा यहां फिर से कहा, नाम अलग है, एक व्यक्त है एक अव्यक्त है एक व्यक्ता व्यक्त है, जो व्यक्त है वो शरीर है, अव्यक्त है वो प्राण है, और प्राण के अंदर भी चेतना है वो परमात्मा है। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्य अनन्या, भक्ति के द्वारा उस अनन्य चेतना को, यस्यांत स्थानी भूतानी, वह उस परम तत्व को अवश्य अंतर्गत प्राप्त कर सकता है। कब? यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः। महाराज अर्जुन काल में, कौन से काल में उसमें शरीर त्याग करे? तो जिसकी कथा हम लोगों ने कल की, नारायण के उत्तरायण काल हो, उत्तरायण काल हो, दिन भी हो, और सूर्य भी चमक रहा हो, तब जाकर के उत्तरायण क्या है, जीवन की उत्तरावस्था। देखिए जीवन की उत्तरावस्था हो, दिन चढ़ा हुआ हो, दिन चढ़ा हुआ सूरज कैसे हो, सूरज बने आपकी मेधा बुद्धि है वो जागृत हो, मेधा बुद्धि जागृत हो, ये आपका दिन चढ़ा हुआ है। और क्या आगे क्या कहा है कि धूमो रात्रि तथा कृष्ण शन्मासा दक्षिणायनम, दक्षिणायन नहीं हो। ये दक्षिणायन क्या है, दक्षिणायन है हमारी उत्तरावस्था नहीं तो दक्षिणावस्था है। कहते हैं उत्तरावस्था में आया तो वो जाने के बाद में वापस नहीं आता है, किंतु दक्षिणायन में गया तो जाने के बाद में वापस आता है। एक तो देवयान है, एक तो पितृयान है, एक देव मार्ग है, एक पितृ मार्ग है। देव मार्ग से जाने वाला वहां से पुनः वापस उसका आगमन होता नहीं है, पितृयान से जाने वाला वो उसको नरक नहीं मिलता है, नारायण उसको स्वर्ग ही मिलता है, किंतु क्या बोलते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति। स्वर्ग तो कैसा है कि आप एक अच्छा टिकट लेकर के किसी हवाई जहाज में चले जाएं, अच्छा बढ़िया टिकट लेकर के किसी सिनेमा हाउस में चले जाएं, टिकट पूरा हो गया उतरो, हाँ खेल खत्म, पैसा हजम, इसे बोलते हैं ना। तो आपका पुण्य जितना है उतना तो मिल जाएगा, फिर पुण्य पूरा हो गया तो जाओ फिर से आगे से चक्की चलाओ। तो ये कहने का तात्पर्य क्या नारायण, यही कि आपकी साधना उत्तरायण की साधना हो दक्षिणायण की नहीं हो। जब तक मन में वासना क्या, ईश्वर की भी इच्छा नहीं करो, मोक्ष की भी नहीं करो, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, ईश्वर भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नाम का शब्द जीवन से निकाल देना चाहिए। क्या क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो बोले कुछ क्या होता है भाई। अब देखिए संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो फिर समाज के अंदर जो नीति नियम करना पड़ेगा, सवेरे उठे तो हमको नल में पानी चाहिए कि नहीं बोलो नारायण, सबसे पहले नल में पानी चाहिए, हाँ और फ्लश में भी पानी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सवेरे उठ के दांत साफ करने के लिए मंजन चाहिए, हाँ नहाने के लिए बाद में कपड़ा भी पूछने को चाहिए, मर्यादा है समाज में रहते हैं तो वस्त्र भी चाहिए, हाँ तो ये तमाम जो है ये चाहिए नहीं होता है। आपके लिए प्रातःकाल जलपान में मध्यान्ह भोजन में जो कुछ देते हैं उससे आप गुजारा कर लेते हो तो चाहिए नहीं, मेरे को नहीं, मैं ये मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये चाहे तो गड़बड़ हो जाएगा। हे करोटी दे लंगोटी तेरे द्वार पाऊं, काम क्रोध छोड़ चले हरि गुण गाऊं, एक रोटी दे लंगोटी। उपाय नहीं है, शरीर का निर्वाह इसलिए एक रोटी चाहिए, दे लंगोटी हमारे समाज में रहना है, समाज की नीति है, नियम है, शील है, लज्जा है, मर्यादा है, इसलिए एक छोटा कपड़ा अंग धारण करने के लिए, अंग को ढकने के लिए चाहिए, किंतु ये चाहिए चाहिए नहीं होता है। चाहिए क्या है, हमारी योग्यता के अतिरिक्त लोभ के वश, ये बड़े शब्द हैं, दो बड़े सुंदर हैं, बोलिए लाभ, फिर बोलिए लोभ, ये लाभ बोलो, लाभ लने कानो ला, ल को एक मात्री है, ल को एक मात्रा को बोलते हैं ला, और अनेक मात्रा को ल, बोलिए ल, ला ली ली लू लू ले लई लो, ये लाभ का इतना गुना कर ले ये हरामखोरी है। हाँ ये नीचे जो फूल बेचता है बच्चा, मैं रोज बोलता हूँ, विजय है उसकी पत्नी भी है, एक बेटा भी है, मैंने कहा बेटे रोज तो फूल कहाँ से लाता है, क्या बोलता है, ये फूल जो है वो आते हैं न्यूजीलैंड से। मैंने बोला न्यूजीलैंड से फूल कैसे आते हैं, नहीं तो स्विट्जरलैंड से तो आते होंगे। मैंने कहा स्विट्जरलैंड से फूल आते हैं तो आपको कहाँ से लाते हैं, स्वामी जी ये फूल जो है ना ये न्यूजीलैंड से और स्विट्जरलैंड से और इंग्लैंड से यहीं से आते हैं। मैंने बोला इधर से आते हैं, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया से तो आते होंगे। मैंने बोला क्रिकेट के टीम के नाम ले रहा है, जीत तो रहा है भारत, तो भारत का क्यों नहीं बोलता है, ये फूल नैनीताल में होते हैं, ये फूल है वो पहाड़ों में होते हैं, नहीं नहीं ऐसा सुंदर फूल थोड़ा भारत में होता है, क्या बताओ, वो अपने जगह में अपना ढंग से अपना विचार अपनी दुनिया में। तो बोला तू कितने में, समझी थोक में ले आते हैं ना तो 10 फूल हमको 50 रुपए में पड़ते हैं, और 20 फूल है 100 रुपए में। बिक्री कैसे करते हो? जैसा ग्राहक, वो 50 का जो जुड़ी है वो 60 में भी बिक्री करते हैं, 70 में भी करते हैं, ग्राहक की दाद देख ले तो 100-120 में भी दे देते हैं, जैसा ग्राहक है। तो ये क्यों कहा भाई नारायण? वो लोभ तो नहीं है, मगर वो बोल रहा है कि मैं 50 का माल, जो 50 तो बोल रहा है वो अल्लाह मालिक है, वो तो 30 में भी हो सकता है, 20 में भी हो सकता है, किंतु हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ये जो फूल जो है, कलकत्ता में जाता हूं, मेरे को फूल खरीदना बहुत पसंद है और बांटना भी बहुत पसंद। अभी नहीं, अभी फूल किसी को देते नहीं, पेड़ ही देते हैं। कलकत्ता में जब कॉन्फ्रेंस होती रही, मैं खुद जाता था लोहा घाट, लोहा घाट में ये ऐसा हाथ कर लो, गेंदे का एक लाइन होता है, सूत में डाला, उसको बोलते हैं कुड़ी, वो 20 माला रहती है कुड़ी। तो उन दिनों में 3 रुपए में कुड़ी मिलता था। हम जो बात कर रहे हैं आपको, ये बात जो है वो तो 80, 82, 85 के है, 3 रुपया में कुड़ी, इतना एक समान, एक जैसे मशीन में छाप के डाला है फूल, हाँ गेंदा का फूल, अच्छी रस्सी के अंदर डाला हुआ, 3 रुपया में 20। किंतु गुलाब लेके आओ, गुलाब लेके आएंगे तो 5% कुड़ी, 5 रुपया में 20, इतना सुंदर गुलाब। किंतु वही गुलाब आप एयर कंडीशन मार्केट में लाओ, वो 20 लेंगे, उसमें से 4-5 छाटेंगे, बाकी उसको निकाल देंगे। तो एयर कंडीशन मार्केट में जो 5 रुपया में 20 मिला था, वो वहां पर 20 रुपए का एक मिलता है, 25 रुपए का एक मिलता है। तो ये क्यों कह रहे हैं? ये जो जीवन है आपाधापी में, लोभ जो है, लोभ वो हमको बाध्य करता है। तो लोभ नहीं करना, लोभ करने से हमारा जीवन है उसके अंदर में गति में मति में रहेगा, कल्याण नहीं होगा। एक राजा के पास में एक नाई आता था, उनके ये बार्बर बनाने, दाढ़ी बनाने के लिए, तो बनाने के लिए आता था, उसकी अपनी दाढ़ी बड़ी है, नाल पिच गए, खिसकोड़ी के जैसा मुंह था, आंखें भी ऐसी हो गई हैं। तो राजा ने पूछा, यार तू क्या खाता पीता नहीं क्या? महाराज आप मेरे को हफ्ते में 2 सोनामोर देते हो, उससे मेरा गुजारा चलता नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, 4 कर ले, अपना चेहरा अच्छा रख, सवेरे सवेरे तू आता है, तेरे को देख के रोना आता है। उसको 4 कर दिया, 4 का 8 कर दिया, 16 कर दिया, जब 64 हो गया उसको, तब भी और भी वो ऐसा हो गया लौकड़ी के माफिक, अभी क्या करना? तो बादशाह ने, राजा ने पूछा, हे बैठ इधर, तू कुछ दिन के पहले जंगल गया था? महाराज गया था। उधर तालाब के किनारे बैठा था? बैठा था। बैठ के रोया था? रोया था। तालाब से एक देव निकला था? निकला था। उसने तेरे को एक तांबे का घड़ा दिया था, चरु दिया था, वो सोना मोर से आधा भरा था? महाराज भरा था, भरा था। तो उस तांबे के चरु को तू ये रुपया डाल के भरना चाहता है? अरे 64 हफ्ते में क्या, मैं रोज दूंगा ना, तभी वो नहीं भरेगा, क्योंकि वो घड़ा लोभ का घड़ा है। ये जो लोभ है, इससे हमारी वासनाएं हमको बद्ध, जो हम बांध देते हैं हमको, ये काम क्रोध लोभ 3 है कि नरकस्य द्वारम इदम्। ये नरक के 3 द्वार है 16वें अध्याय में कहा। तो दक्षिणायन में रहना क्या है, वो भगवान के पास जाएंगे, किंतु उसको वापस आना पड़ेगा। वो तो पितृयान है, वो देवयान नहीं है। वो क्या कहा कि धूमो रात्रि सदा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम, 6 महीना दक्षिणायन का है, भी इसमें मरना नहीं भाई। और क्या कहा कि धूमो रात्रि, एक तो होता है दिन जहां सूर्य प्रकाश माने, रात्रि जहां सूर्य नहीं है, अंधकार है, भटक जाने वाली बात है। और धूमो, ये धुआं है, ये बहुत जोर की जब बारिश रहे, मुंबई में तो यही बता सकते हैं, बहुत जोर की जब बारिश रहे, आपका वाइपर है कितना भी अच्छा हो, किंतु इतनी बारिश में आपको एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है, आगे वाला दिखेगा नहीं। दिल्ली में क्या है, वो हवाई जहाज चलते नहीं जनवरी में, दिसंबर में, क्यों? वो कोहरा हो जाता है, कोहरा, तो कोहरे में भी इंसान भटक जाएगा। तो जहां धुआं बहुत है, इतना सारा धुआं है, तो धुआं हो जाएगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। धुआं क्या होता है? देखिए, सूखी लकड़ी हो तो उसमें धुआं नहीं होता है, गीली लकड़ी हो तो वहां धुआं होता है। तो जो लकड़ी सूखी है उसमें धुआं नहीं, वहां अग्नि होता है, और जो लकड़ी गीली है तो वहां अग्नि नहीं होता है, वहां धुआं होता है। तो ये गीला क्या है, सुख क्या है? हमारे जीवन में जब हम नीरस हो जाएंगे, तृष्णा नहीं है, वासना नहीं है, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो सुखी हो जाएंगे, तब अग्नि है प्रज्वलित हो जाएगी, किंतु इच्छाएं कामना भी है, छोकरा ने परणावानो छे, छोकरा छोकरी ने परणावानी छे, करियावर करवानो छे, आ धंधो बाकी छे, कितना गोबर जीवन में रहेंगे तो फिर धुआं ही उठेगा मृत्यु के समय, तो गीला होना क्यों है। तत्र चांद्र वसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते, कहते हैं कि वो धुएं में हमारे जीवन में मरने के समय में भी अनेक इच्छाएं कामनाएं हैं, वो धुएं के समान है। वो शनवासा वो जो योगी है वो आपको जाएगा। फिर क्या कहा है, शुक्ल कृष्ण गति ये थे जगत शाश्वती मति एकया, थोड़ा पाठ करना चाहिए। बोलिए ये आपका 25वां श्लोक से पाठ करेंगे। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति एते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाढ्यम्। शुक्ल क्या कहा, शुक्ल कृष्ण गति ये थे जगत शाश्वते मते। महाराज जगत में दो प्रकार, एक शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है। तो शुक्ल प्रश्न है वो देवयान है, कृष्ण है वह पितृयान है, दो माने गए हैं। तो शुक्ल पक्ष में जाना, देव मार्ग पर जाना, पितृ में नहीं जाना। नैते श्रुति पार्थ जानन, क्या कहा, न एते नैते, क्या कहा है पार्थ, एते इन दोनों श्रुति मार्गों को जानन तत्व से जानता हुआ कश्चन योगी, कोई भी योगी न मुह्यति मोहित नहीं होता है। तस्मात इस कारण से अर्जुन सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भव, इसलिए हमेशा योगयुक्त रहो। तो योग का अर्थ क्या, सिर नीचे और पांव ऊपर शीर्षासन है, नहीं है नारायण। अगर सिर नीचे और पांव ऊपर करके इसको योग कहते हैं तो वो चिमगादड़ जो है, वो चामा चिड़ियों, वो सारा जीवन सिर नीचे लटकाती है। क्या दाढ़ी बनाने से, जटा बढ़ाने से योगी, हमारा पूरा पंजाब के सब सिख मेरे भाई बहन है, भाई लोग हैं, इनके तमाम के दाढ़ी जटा वो सारे योगी हैं क्या। जो पानी में चल जाता मछली, पूरा जीवन पानी में रहती है। जो जमीन के नीचे गड़ गया 6 महीना, अरे पूरा मेंढक भी सारा जीवन जमीन के नीचे रहता है। तो ये तमाम योग नहीं है। योग मैंने जोड़ना है अपने आप को परमात्मा में जुड़ देना। इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस 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 एब्सोल्यूट, हर हाल में अलमस्त सचिदानंद हूं, कैवल्य केवल कूटस्थ आनंद हूं। ये जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, यही तस्मात् सर्वेषु कालेषु है। क्या कहा, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव, योगी पुरुष इस रहस्य को जानकर, तत्व से जानकर, वेदों के पढ़ने में, यज्ञ तप दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा है उसको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। इन कर्म के परे 18वां अध्याय है, इसके 5वें श्लोक में कहा, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तप कर्म ये करने से मनुष्य की मुक्ति होती है। यज्ञ क्या है, यज्ञ के अर्थ ये सभी तरह दुरितानी स्वाहा स्वधा नहीं है। हमारे कृष्ण भगवान ने हमारी गीता के माध्यम से कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये भगवान के नाम के सुमिरन के समान और कोई श्रेष्ठ यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ है। यज्ञ दान, दान उदारता से दान देना। देखिए ये दान के बारे में भी एक सुंदर एक आनंद की, एक विनोद की कथा है, मधुरेण समापयत, मधुरता से पूरा करना चाहिए। तो वो तो एक ब्राह्मण दंपति थे, तो ब्राह्मण का एक नियम था किसी को भी दान नहीं देना है। उनका नियम था मैं किसी को दान नहीं देंगे। वो रहते थे इलाहाबाद में, प्रयाग में रहते थे। ग्रहण के दिन रात्रि में ग्रहण है, वो 1:30-2 बजे पूरा हो जाता है। तो ब्राह्मणी ने कहा कि देखो 2 बजे ग्रहण पूरा होता है, चलो हम जाकर के अभी ही वो त्रिवेणी में स्नान करके आएंगे, दिन चढ़े फिर नहीं जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा नहीं जाएंगे, यही नाव मन चंगा कथरोट में गंगा, यही नाव गंगे चमने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु करके यही जल में सोच लो। अरे देखिए यहां हो इतना बड़ा ग्रहण है, ऐसा पुण्य से मिलता है, लोग दूर दूर से आएंगे, इसलिए तो कहता हूं मेरी भगवान नहीं जाना है। क्यों जाएंगे गंगा नहाएंगे, फिर वहां कोई एक ब्राह्मण खड़ा हो जाएगा दान दे दो, मैंने तो दान नहीं देने की कसम खाई है, अब वहां जाकर कोई मेरा। देखो मेरे प्रभु रात 1:45 बजे 2 बजे ये 2:30 बजे कोई कुदर भीख लेने के लिए नहीं होता है। चल तू कहती है तो चल, देख दान बांध देना नहीं है, पैसा लेके जाना नहीं है, कुछ भी हाथ में नहीं पकड़ के जाना, न फल न चावल, अपना एक धोती पकड़ चल। वो नहा लिए, शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि इतनी जनता करोड़ों की इतनी आधी रात में ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे नहाने आया है तो इसका कल्याण करना चाहिए, तो वो भी ब्राह्मण बन के आ गया। इतने पुण्य में आप हो तो चलो दान दे दो। जब दान दे दो शिव जी आ गए तो ब्राह्मणी के सामने ब्राह्मण ने देख लिया। ब्राह्मणी कुछ नहीं बोली, ब्राह्मण ही बोल दिया देखिए महाराज जी हमें क्षमा करें, हम किसी को दान नहीं देते हैं, न हम अपने साथ पैसा लाए। कोई चिंता नहीं, लोग बाग तो 5 बजे के पहले कोई नहीं आएंगे, मैं भी खाली हूं, अकेला यहां क्या करूंगा, आपके साथ चलता हूं, आपको घर भी छोड़ दूंगा, आपको भी कंपनी मिलेगी, ठंड भी नहीं लगेगी बात करते करते, उधर कुछ दे देना। अरे भाई हमने बोला नहीं, मैं चलता हूं। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी चले, पीछे पीछे महादेव जी भी ब्राह्मण के स्वरूप में चले। अभी ब्राह्मण बोलता है क्या करना है, ब्राह्मणी बोलती मैं क्या करूं, चुप रहे मैं सो जाता हूं, सिर में ओढ़ करके बोल दे मेरा पति मर गया, जब बोल दे जा। तो सिर में ओढ़ करके लंबा होकर सो गया। उन्होंने कहा मेरा पति मर गया है महाराज, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। शिवजी ने जो ब्राह्मण बना बोले अरे तुम्हारा पति मर गया, 7 कदम साथ चलने पर पति पत्नी होते हैं, दोस्त होते हैं। मैं तो गंगा किनारे से आया हूं तो मैं आपका हितेच्छु हूं, अब इसका अग्नि संस्कार किए बिना नहीं जाऊंगा, थोड़ा सूरज निकलने दो, सूरज निकलने से अड़ोस पड़ोस को सबको बुला देंगे, सब लोग एक एक लकड़ी लेके आ जाएंगे, मैं 2 लंबे बांस लाऊंगा, 6 टुकड़ाऊंगा और 5 किलो रस्सी लाऊंगा, 1 कपड़ा बिछाने का सब मैं ले आऊंगा, कोई चिंता मत करो। ब्राह्मणी पीरंद क्या करना है, चुप रहे बोले मर गया हूं, लाने दे लकड़ियां। और सचमुच लोग आए, ब्राह्मण ने प्राणायाम करके अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में रख दिया ताकि कोई कितना नाड़ी पकड़े नाड़ी में प्राण दिखे ही नहीं। लोगों ने उसको बांध भी दिया, बांधने के बाद में स्मशान में भी लाए, चिता के ऊपर तक रख दिया। अब शिवजी है वो थोड़ा घबराने लगे, मेरी वजह से इसकी जान जाएगी, अगर ये जल गया इसी अवस्था में तो शिवजी ने सोचा है कि नारायण ब्राह्मण हत्या का पाप मुझको लगेगा, मैं इसके पीछे कह दिया है। वो स्पष्ट वक्ता था, उसने साफ कहा मैं दान नहीं देता हूं, मुझे क्यों ये किटकिट करना चाहिए। तो उन्होंने अपना जल गंगा जी का सिर से पकड़ के डाला, ये ब्रह्म देवता जागृत हो, मैं शिव हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। बस वो चिता के ऊपर बैठ गया, सब लोग बोले आश्चर्य हो गया, देखो एक ब्राह्मण है मृत्यु से उसको प्राण जागृत हो गए। तो शिव जी ने हाथ पकड़ के उसको नीचे उतारा, वरम ब्रूही तुमको क्या वरदान चाहिए, मैं शिव जी हूं, तुम्हारी निष्ठा देख के, देखिये दान देने की निष्ठा होती है, दान नहीं देने की भी होती है, किंतु निष्ठा बनाए रखो ब्रह्म अक्षर, अक्षर ब्रह्म योग क्या कहता है, मेरी निष्ठा ब्रह्म में ही हो, ब्रह्म के अतिरिक्त मेरी कुछ भी नहीं हो, उसके नीचे आना नहीं, केवल उसी में रहना, ये जगत के प्रपंच में रहो, क्योंकि उसके बिना कुछ, जिस जमीन पर चलते हैं तो वहां पर ये जमीन के ऊपर में शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो है, तो किराया तो सवेरे उठने से कुछ किराया पेट को भी देना पड़ता है, 1 रोटी उपाय तो है नहीं, बिना लालजी भाई को ढूंढे गुजरा होता नहीं है। कथा में आना है तो बिना राजू को ढूंढे दिन को ढूंढे माइक कौन चलाएगा, ओम कौन बोलेगा। तो कुछ कुछ तो चाहिए, समाज में रहे तो होना चाहिए। किंतु डिटेच, दो शब्द है बोलिए, अटैच डिटेच, डिटेच अटैच। और छोड़ो जोड़ो, बोलो छोड़ो जोड़ो। बिना छोड़े नहीं जोड़ सकते। निष्ठा कैसी है? ऐसी पक्की निष्ठा, दान नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। कम से कम निष्ठा तो, हमारे जीवन की निष्ठा ही नहीं। हमारे जीवन तो कहीं है बिना पैंदे के लोटे के माफी, इधर भी लुढ़कते हैं उधर भी लुढ़कते हैं। ऐसा मत करो, एक और निष्ठा रखो, ऐसी अनन्य चेता। क्या बार बार कहा है? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिवास। अनन्य, एक ही तू परमात्मा के साथ में, मैं तो सांवरे के संग रांची। ये भाव निष्ठा हो जाए तो शिवजी महाराज ने कहा, अभी देखो निष्ठा अभी कैसी है, तुझको क्या वरदान, वरम ब्रूही, वरदान क्या चाहिए बोलिए। देखिए, अगर मैं आपको दान देने वाला तो नहीं हूं, नहीं दूंगा, मगर अगर मैं दान देता हूं तो आप मुझको क्या, मेरा कल्याण, आप सवेरे सवेरे आप कैलाश छोड़ के आ गए हमसे दान लेने के लिए, किस भाव से? मेरा कल्याण करने के लिए। हाँ, तो अगर मैं दान देता हूं तो आप मुझको क्या देने वाले थे? बोले मैं आपको कैलाश पद की प्राप्ति। तो बोले कि आप मान लो कि आपको दान मिल गया, कैलाश पद मुझको दे दो। बोले नमः पार्वती दतये हर हर महादेव। तो एक निष्ठा कैसी हो, तो यहां पर भी कहा है दानेषु यत् पुण्य बलम प्रतिष्ठम, दान में अत्यति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम सानमुपैति चाद्यम। अरे जो उल्लंघन कर जाए, इनको ये एक स्थिति हो जाने के बाद में फिर उनको वेद का पाठ, यज्ञ, तप, दान, ये तमाम की आवश्यकता रहती नहीं है। वो कैसी अवस्था में होता है? वो ऐसी अवस्था में है कि बस वो जैसे कि स्वयं परमात्मा चल रहा है, स्वयं परम तत्व में है, ऐसी ही अवस्था में रहता है। ध्यान दे, ये अक्षर ब्रह्म योग जो है उसका हेतु क्या है? हेतु यही है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में आपाधापी है, किंतु उस तमाम आपाधापी के बीच में हमें अपने गंतव्य को एक क्षण भी नहीं विस्मृत करना चाहिए। जैसे कि हमने आपसे कहा, हमारे पहाड़ में, यहां पर बंबई में भी, सब जगह में, हाँ, वो जिगजग रास्ता हो नहीं हो, नजर हटी दुर्घटना घटी। हमारे जीवन की एक गति है, ये आपका जो जिब्रा में चलने के लिए आपको कहा है, जिब्रा में चलने के लिए आपको कहा है, तो आप उसमें ही चलिए। जहां पर लिखा है कि थांबा, तो वहां मत चलिए। जब आपके लिए मार्ग स्पष्ट हो तो आप चलिए, ट्रैफिक रुक जाए, आपके लिए खुला है तो आप चलिए। किंतु नहीं नहीं हमको तो बंबई का आदि, ऐसे ऐसे करके निकल जाएंगे। और गाड़ियां जो आती हैं वो इतनी वेग से आती हैं, वो सबको जल्दी लगी हुई है फटाफट निकल जाने की, कौन टक्कर कब मार देगा भरोसा है। इसलिए ये जो हमारे चारों ओर की गतिविधियां हैं, वो तमाम गतिविधियां आपको आकर कब टक्कर मार देगी भरोसा। इसलिए हे मन समल समल पग भरिए, ये हमारे अक्षर ब्रह्म जो आठवां अध्याय क्या, हे मन समल समल पग भरिए, समल समल करके पग भरे और अपने जीवन के प्रत्येक सांस को परम तत्व के साथ जोड़ दें। साधन तो करना ही पड़ेगा, श्रवण आप कर रहे हो यह आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसका मनन भी करें और उसको निधिध्यासन करते हुए परम तत्व की प्राप्ति इसी जन्म में करें और जन्म हमारा ना हो, यही हमारी आकांक्षा है। परमात्मा की मंगलमय कृपा का वरदान सभी का शुभ करे, सभी का कल्याण करे, एक प्रार्थना करेंगे, इसके बाद में वाणी को विराम देंगे। बोलिए भूमि मंगलम भूमि मंगलम भूमि मंगलम भूमि मंगलम उदक मंगलम उदक मंगलम उदक मंगलम उदक गगन मंगलम गगन मंगलम गगन मंगलम वायुमंगलम वायुमंगलम
वायुमंगलम वायुमंगलम
अग्निमंगलम अग्निमंगलम
अग्निमंगलम
अग्निमंगलम
सूर्यमंगलम
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 सूर्यमंगलम चंद्रमंगलम चंद्रमंगलम
चंद्रमंगलम
चंद्रमंगलम जीवमंगलम जगतमंगलम
जीवमंगलम
जगतमंगलम मनोमंगलम आत्ममंगलम
मनोमंगलम मंगलम आत्म मंगलम
सर्व मंगलम सर्व 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 मंगलम
सर्व मंगलम
सर्व मंगलम सर्व मंगलम
सर्व मंगलम
सर्व मंगलम सर्वमंगलं भवतु 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 सर्वमंगलं भवतु 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 सर्वमंगलं भवतु 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 सर्वमंगलं भवतु 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 भवतु
भवतु
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को ये दास का प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो